थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसीहा की परस्तुति में, मसीहा की परस्तुति में बहुत आराम मिलता है। दुआ में एक नया पैगाम, दुआ में एक नया पैगाम सुबह शाम मिलता है। मसीहा की परस्तुति में बहुत आराम मिलता है। अगर इंसान रहे साबित कदम ईसा की उल्फत में, अगर इंसान रहे साबित कदम ईसा की उल्फत में, बाकदरे ज़ल्फ में शर्मे, बाकदरे ज़ल्फ में शर्मे उसे इनाम मिलता है। मसीहा की परस्तुति में, मसीहा की परस्तुति में बहुत आराम मिलता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर के प्रेम में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब बाइबल में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अय्यूब अपने तीन मित्रों को अलग अलग तरीके से जवाब देता है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 22 से 23 तक का अध्ययन करेंगे और आज का विषय है एलीपज का तीसरा वाद, अर्थात एलीपज का तीसरी बार बात करना। तो इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए आशीष मांगेंगे। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम अय्यूब की पुस्तक में से, अय्यूब के जीवन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सीखें निश्चित रूप से हम इससे हरेक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन से निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, पिता परमेश्वर, आप उन पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें, उन्हें शांति और आनंद दें, ताकि आज के अध्ययन के द्वारा वे आपसे और अधिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। फिर से एक बार हम सबको इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों अय्यूब की पुस्तक में से देख रहे हैं, और विशेष करके उसके तीन मित्र जो अय्यूब को सांत्वना देने के बजाय उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, आज हम देखते हैं एलीपज का तीसरा वाद अर्थात उसका बात। बौद्धिक युद्ध का यह तीसरा सत्र है। आज यह अधिक प्रचलित नहीं है, और हमारे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होती तो थी, परंतु उस समय भी यह उतना ही अरुचिकर था जितना आज है। मेरे मित्रों, आज करोड़ों रुपयों की लागत के स्टेडियम खेलों के लिए बनाए जाते हैं, परंतु बौद्धिक कार्यकलापों के लिए बहुत कम पैसा लगाया जाता है, और आत्मिक कार्यों में तो बहुत ही कम। अय्यूब की पुस्तक में यह एक बौद्धिक वरन एक आत्मिक युद्ध है। हम में से बहुत से जन फुटबॉल लेकर या बैट पकड़कर खेलने नहीं गए हैं, परंतु जीवन के अखाड़े में आत्मिक युग में हम सब भागी हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह संघर्ष महत्व नहीं रखता है, वे तो बैठकर खेल देखना अधिक पसंद करते हैं। मेरे मित्रों, आप और मैं आत्मिक युद्ध में सहभागी हैं। पौलुस कहता है कि हम मल्लयुद्ध करते हैं, और हमारा मल्लयुद्ध अभी चल रहा है। इस प्रकार के बौद्धिक और आत्मिक युद्ध उस युग के मनुष्यों में रुचि जगाते थे। हम उन मनुष्यों को असभ्य कहते हैं, परंतु हम बौद्धिक स्पर्धा को मान्यता देने से चूक गए हैं, जबकि हमने करोड़ों के स्टेडियम बनाए हैं। मेरे मित्र, आप देखेंगे कि एलीपज को असाधारण अनुभव प्राप्त थे। वह विचित्र और रहस्यमय स्वप्न देखता था। वह आध्यात्मिक मनुष्य था। वह हर बात में कहता है, मैंने देखा। तो आइए हम सुने वह क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद में कहता है, तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। मेरे मित्र, इस प्रश्न से प्रकट है कि मनुष्य परमेश्वर के लिए किसी लाभ का नहीं। वह कहता है, अय्यूब, तू निश्चय ही अपने बारे में बहुत सोचता है, परंतु तेरे विचार में परमेश्वर तेरे बारे में क्या सोचता है? एलीपज के विचार में अय्यूब का स्वभाव प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर को उससे कुछ लाभ हो रहा है, और यदि परमेश्वर उसे नहीं रोकेगा तो वह परमेश्वर के लिए असाध्य हो जाएगा। यही कारण है कि परमेश्वर उस पर कष्टों द्वारा रोक लगा रहा है। निसंदेह एलीपज लक्ष्य से चूक रहा है। निश्चय ही ऐसी बातों से एक असहाय मानव जिसे स्वर्ग से ज्योति की आवश्यकता है किसी प्रकार की सहायता नहीं पा रहा है। एलीपज की यह बात कुछ कलीसिया के सदस्यों के लिए सही है, क्योंकि उनकी अपनी समझ में वे परमेश्वर के लिए लाभकारी हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर का बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं, और वह उन्हें अपने दल में रखना परमेश्वर के लिए सौभाग्य की बात है। वे सोचते हैं कि जब वे स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में उनकी उपस्थिति से बहुत सुधार आएगा। हमें यह समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं, अर्थात हम सड़े हुए फलों के समान हैं। लूका की सुसमाचार 17 अध्याय उसके 10 पद में प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सेवा का दृष्टांत देते हुए कहा, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 पद में, क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? देखिए, वे अय्यूब के कवच में दरार का संदेह कर रहे थे, जो कुछ अध्याय के बाद में स्पष्ट हो जाएगा। उनके साथ समस्या यह थी कि वे अय्यूब की सही दशा समझ नहीं पाए थे और वे उसका उपचार भी नहीं जानते थे। वे उसे सांत्वना देने और सहायता करने में अयोग्य थे। अब अय्यूब का दावा है कि वह निर्दोष है और परमेश्वर के लिए अति हर्ष का कारण नहीं था। मेरे मित्र, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक कथित विश्वासी जो आत्मनिर्भर हैं और अभिमानी हैं, वे वास्तव में मसीह यीशु पर आश्रित नहीं हैं। मैं तो बलपूर्वक कहूंगा कि हम स्वयं को संडे स्कूल के नियमित आने वाले अच्छे बच्चों के समान परमेश्वर के लिए हर्ष का कारण न समझें। विश्वासी प्रायः यही सोचते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार की जीवन शैली से प्रसन्न होता है। मैं नहीं मानता। हमें स्वयं को पहचानना है और परमेश्वर पर अपनी पूर्ण निर्भरता को समझना है, अर्थात हमारे लिए उसकी घोर आवश्यकता को समझना है। हमें अपने कामों और व्यक्तित्व से उसे प्रभावित करने की अपेक्षा उसे निहारना है। अय्यूब 22 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या यह तेरी भक्ति के कारण है? ध्यान दीजिए, एलीपज अय्यूब से पूछता है, क्या तू इतना धर्मी और खरा मनुष्य है कि परमेश्वर तेरे साथ व्यवहार करने से डरेगा? हमें यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अय्यूब को खरा मनुष्य कहा था तो उसका अर्थ था कि वह बलिदान चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में था। वह अपने पुत्र पुत्रियों के लिए मेल बलि चढ़ाता था। परमेश्वर अय्यूब से डरता नहीं था। स्पष्टतः अय्यूब अत्यधिक कठिन परिस्थिति में था। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय उसके 5-7 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। एलीपज की यह बड़ी घटिया बात है। आज भी विश्वासी ऐसी घटिया बातों को करते हैं। अय्यूब पर जब विपत्ति पड़ी तब अनेकों का कहना था, मुझे आश्चर्य होता है कि उसके जीवन में ऐसी क्या बात है, क्योंकि वे कुछ देख न सके इसलिए अफवाह उड़ाने लगे। लोग कल्पना करने लगे कि कारण यह है या वह है, और शीघ्र ही उन्होंने तिल का पहाड़ या ताड़ बना दिया। एलीपज भी ठीक ऐसा ही कर रहा है। उसने अय्यूब पर दोष लगाया कि वह सोचता है कि परमेश्वर उसके अच्छे आचरण से लाभ उठा रहा है। अब वह अय्यूब से कहता है कि उसकी दुष्टता अपनी चरम सीमा पर है। एलीपज सोचता है कि वह उसे उसके सब अपराध बता दे तो अच्छा होगा। वह केवल कल्पना कर रहा है क्योंकि उसके आरोप एक भी सही नहीं है। वे केवल व्यर्थ की बातें हैं। देखिए वह अय्यूब पर कैसे दोष लगा रहा है। मेरे मित्र, ऐसा व्यवहार अय्यूब के लिए सहायता का कारण नहीं है। इससे तो अय्यूब केवल आक्रामक होगा। वह अय्यूब को परमेश्वर के पक्ष में बोलने की प्रेरणा देने की अपेक्षा स्वयं के बचाव के लिए प्रेरित करता है। यदि अय्यूब को विश्वास हो जाए कि वह इन आरोपों में निर्दोष है तो स्वाभाविक है कि वह सोचेगा कि परमेश्वर गलत कर रहा है। यह विपरीत वस्तु स्थिति है। एलीपज के आरोप अय्यूब को आत्मरक्षा के लिए बाध्य करते हैं। आगे हम देखेंगे अय्यूब के बारे में मनगढ़ंत कहानियां। अय्यूब 22 उसके 8-11 पद में हम पढ़ते हैं, जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? मित्रों, ध्यान दीजिए कि एलीपज के कहने का अभिप्राय था कि अय्यूब इन बातों का दोषी है। वह अय्यूब को चिताता है कि परमेश्वर परम प्रधान है और वह सब कुछ देखता है। आगे लिखा है अय्यूब 22 उसके 12 पद में, क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। अय्यूब, तूने यह सब किया और सोचा कि परमेश्वर नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर सब देखता है। तू सोचता था कि तू बच जाएगा, परंतु नहीं, तू बच नहीं पाया। संपूर्ण विवाद का आधार है कि अय्यूब के जीवन में गुप्त पाप हैं, जिसे मनुष्य नहीं जानता, परंतु परमेश्वर उसे उसका दंड दे रहा है। एलीपज के तर्क के अनुसार उसके रोग और कष्टों का एकमात्र कारण यही है। उसके विचार में अय्यूब सोचता है कि परमेश्वर नहीं जानता कि क्या हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 22 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है, क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है। काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता, वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। अय्यूब, तू तो परमेश्वर को नहीं देख सकता, परंतु वह तुझे देखता है और तेरे बारे में सब कुछ जानता है। आगे लिखा है अय्यूब 22 उसके 15 से 17 पद में, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। मेरे मित्र, उसका तर्क वही है जो हमने पहले देखा है। वह अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है, वह कहने योग्य है, मैंने दुष्ट को देखा है। एलीपज सुसमाचार की पुकार सुनता है, परंतु अय्यूब को इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध मुक्ति प्राप्त था। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसके 25 पद में उसने अंगीकार किया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आगे लिखा है अय्यूब 22 उसके 21 पद में, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। यह एक अति उत्तम एवं अद्भुत निमंत्रण है, परंतु अय्यूब के लिए नहीं। यह वैसा ही निमंत्रण है जो आज अधिकांश कलीसियाओं में दिया जाता है। मुक्ति प्राप्त विश्वासियों, वे सोचते हैं कि कलीसिया को उद्धार का निमंत्रण दिया जाता है जो ऐसी परिस्थिति में अर्थहीन है, व्यंग्यात्मक है। अय्यूब से कहना है कि वह प्रभु यीशु को ग्रहण करे उसकी समस्या का समाधान नहीं है। जी हाँ, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। यह एक अनुग्रहित एवं अति उत्तम निमंत्रण है। परमेश्वर हमें यही निमंत्रण तो देता है। प्रभु यीशु ने नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में यही कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एलीपज कहता है कि परमेश्वर के साथ शांति बनाने का यही उपाय है। रोमियों के पत्र 5 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस भी यही कहता है, हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, इससे तेरी भलाई होगी। जी हाँ, यह भी सच है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि भलाई का अर्थ है हमारे लाभ की बात। इसका अर्थ अनुशासन भी है। आवश्यकता पड़ने पर इसे भी हम देखेंगे। अय्यूब 22 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। वे एक ही राग अलाप रहे थे, अय्यूब अपने गुप्त पाप को देख और परमेश्वर के निकट आ जा। वे अय्यूब के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे परमेश्वर से उसका संबंध है ही नहीं। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 22 उसके 24 से 26 पद में, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। ध्यान दीजिए, एलीपज की समझ में परमेश्वर अय्यूब का वैरी है। जबकि वह उसका बैरी नहीं है। आज सुसमाचार प्रचार में यही एक स्वभाव विनाशक है। मनुष्य पापी है यह तो स्पष्ट करना ही है, परंतु परमेश्वर संसार का बैरी नहीं है। उसने तो इस संसार से मेल किया है। आप और मैं परमेश्वर से मेल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यह काम मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। जी हाँ, परमेश्वर ने मेल किया है और अपनी बाहें फैलाए संसार से कहता है, तुम मेरे पास आ सकते हो, परंतु मार्ग मेरा ही अपनाना होगा। तुम्हें उसी के द्वारा आना होगा जिसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता। जी हाँ, उसके द्वारा आप हिया बांध कर परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। वह बड़े स्वागत के साथ और आत्मिक आशीषों के साथ आपसे भेंट करेगा। एलीपज परमेश्वर का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है और न ही वह अय्यूब के लिए किसी प्रकार की सांत्वना या सहायता है। मेरे मित्र, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 23 में देखेंगे अय्यूब का सातवां प्रतिवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब फिर से जवाब देता है एलीपज को। अब सातवीं बार अय्यूब अपने मित्रों को उत्तर देता है और परमेश्वर के लिए तरसता है। वह परमेश्वर के समक्ष अपना दुखड़ा या रोना रोता है और रोना चाहता है। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वह परमेश्वर द्वारा परखा जा रहा है और परमेश्वर उसे अवश्य ही पार लगाएगा। तो आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक, उसके एक और दो पद में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। अय्यूब कहता है, तुम मेरा हाल देखते हो और मेरी शिकायत सुनते हो। सच तो यह है कि मेरा हाल जो दिख रहा है और जो मैं सुना रहा हूँ उससे भी कहीं अधिक बुरा है। आगे लिखा है अय्यूब 23 अध्याय के 3 पद में, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में आने को तरस रहा है। यदि उसके मित्र उसे किसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में ला पाते तो बहुत अच्छा होता। अनुग्रह के सिंहासन के निकट उसे न्यायसन के निकट आने की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो पहले से ही वह था। उसने तो अनुशासन का पाठ भी पढ़ लिया था, इसमें शक नहीं। अब उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए किसी की आवश्यकता थी। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। अय्यूब कहता है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में अपना बचाव करना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी अपना बचाव नहीं कर सकता। हम सबको वहां अपना दोष स्वीकार करना होगा। हम सब के सब दोषी हैं। हम देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में अय्यूब अपना बचाव करना तो भूल जाता है और अपनी समझ बदल लेता है। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। अय्यूब सोचता है कि परमेश्वर उससे क्या कहेगा, वह उसे कहाँ खोज पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी मनोकामना हो तो मनुष्य अवश्य परमेश्वर को पा लेगा, परमेश्वर उससे भेंट करेगा। जी हाँ, आइए हम देखें अय्यूब 23 अध्याय उसके 6-9 पद में, क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता, नहीं वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उसे विवाद कर सकते और इस रीति मैं अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। मेरे मित्र, अय्यूब की अंतर आत्मा में प्रकाश की किरण फूट रही है। मेरे परखे जाने में एक उद्देश्य है, मैं नहीं जानता कि वह क्या है, मैं समझता भी नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर को मेरे जीवन में इसका प्रयोजन है। मेरे मित्रों, क्या आपने अपने जीवन में अपने मन में कभी यह बोध पाया है कि कष्ट आपके विश्वास को दृढ़ता प्रदान करते हैं? क्या आपको यह बोध हुआ कि इससे आपको ऐसा नैतिक चरित्र प्राप्त हुआ जो पहले आप में नहीं था? क्या आपने आंधी में परमेश्वर के बल और उसकी सांत्वना का अनुभव किया है? आपको यह तो पता ही होगा कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा नहीं की कि आप आंधी में नहीं फंसेंगे, परंतु उसकी प्रतिज्ञा है कि हम पार लगेंगे। मेरे लिए यही एक उत्तम बात है। अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अय्यूब के मन में परमेश्वर के वचन की लालसा थी और वह परमेश्वर के वचन का अनुपालन करता था, परंतु वह ठीक ठीक नहीं समझता था या उसका अर्थ नहीं समझता था। परमेश्वर के वचन में निहित कुछ शिक्षाएं केवल वचन के मनन से प्राप्त नहीं होती है, उनके लिए अनुभव की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के अनेक सत्य हमें इस रीति से सिखाए जाते हैं जिसे हम कई बार नहीं समझते हैं, अर्थात हमें अनुभव के बातों को भी सुनना और सीखना है। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की बातों को धीरे धीरे समझ रहा है और वह उसके करीब आना चाहता है ताकि वह इससे छुटकारा पाए। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने फिर से एक बार अय्यूब के जीवन से नई बातों को सीखा है कि हम मनुष्य कमजोर और दुर्बल हैं, परंतु जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके निकटता में आते हैं, तब परमेश्वर अपने उपाय हम पर प्रकट करता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जो पीना हो तो पी सकती, फितरत से दुआ घर में। जो पीना हो तो पी सकती, फितरत से दुआ घर में। सरासर मस्त जो कर दे, सरासर मस्त जो कर दे, वहाँ वो जाम मिलता है। मसीहा की परस्तिश में, मसीहा की परस्तिश में बहुत आराम। अजब दस्तूर